आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। आज से ब्राजील में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत COP30 का 30वां जलवायु सम्मेलन शुरू हो रहा है। सम्मेलन से दो दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्षों और देश के प्रतिनिधियों की लीडर्स समिट में ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की वैश्विक महत्वाकांक्षा अभी भी अपर्याप्त बनी हुई है, क्योंकि विकसित देश अनुपातित योगदान नहीं दे रहे हैं।
10 years after the Paris Agreement, global ambition remains inadequate. Many nations indices fall short, while developing countries continue to take decisive climate action. Developed countries that have disproportionately appropriated the global carbon budget must accelerate emission reductions and deliver the promised adequate and predictable support. Given the rapid depletion of the meager remaining carbon budget, developed countries must reach net zero much sooner than they have declared and invest substantially in reaching net negative emissions.
Bharat ka paksh rakhte hue Shri Bhatia ne kaha, jab vikasshil desh निर्णायक जलवायु कार्यवाही जारी रखे हुए हैं, तो वैश्विक कार्बन बजट का डिस्प्रोपोर्शनेट रूप से दुरुपयोग करने वाले विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी लाने, निर्धारित समय से पहले नेट शून्य लक्ष्य तक पहुंचने तथा विकासशील देशों को पूर्वानुमानित रियायती वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत ने ब्राजील के पहल पर स्थापित ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी का स्वागत किया और एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि विश्व आज से 10 वर्ष पूर्व घोषित पेरिस समझौते 2015 में उल्लिखित तापमान लक्ष्यों को हासिल करने और वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने से काफी दूर है। जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही की वर्तमान गति को देखते हुए लगता है कि 2030 तक 2% की कमी हासिल करना भी मुश्किल होगा। भारत और अमेरिका के कभी कड़वे तो कभी मीठे होते रिश्तों के बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने शुक्रवार को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ $1 अरब यानी करीब 8,870 करोड़ रुपए का समझौता किया, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भारत को 113 जेट इंजन और सहायता पैकेज देगी। HAL के अनुसार ये इंजन 97 तेजस लड़ाकू विमानों के Mach 1A वर्जन में लगाए जाएंगे। इन इंजनों की डिलीवरी सन 2027 से 2032 के मध्य होगी। इस समझौते से अमेरिका और भारत के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार तेजस Mach 1A के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। Mach 1A सिंगल इंजन वाले तेजस का एडवांस वर्जन है। यह चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है जो कम वजन के बावजूद बेहद फुर्तीला है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं। बिहार में कल विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण है, जिसके प्रचार का शोर थम चुका है। इस चरण में बिहार के मतदाता 122 सीटों के लिए मतदान करेंगे। रविवार को प्रचार के आखिरी दिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर घुसपैठियों को बचाने का और जंगल राज कायम करने का इल्जाम लगा रहे हैं। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने अरवल की एक जनसभा में क्या कहा।
अभी थोड़े समय पहले राहुल बाबा ने एक यात्रा निकाली थी, बड़ी यात्रा निकाली। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते, रोड पर निकले 15 दिन तक रोड पर निकले। और भाइयों बहनों, यात्रा किसके लिए थी? बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी? ना भाई। बिहार के दलितों के लिए थी? ना। बिहार बिहार के अति पिछड़ा गरीब और माताओं बहनों के लिए थी ना, यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए। यात्रा निकाला था घुसपैठियों को बचाने के लिए। अरवल वालों मुझे बताओ, बिहार में घुसपैठिए रहने चाहिए क्या?
महागठबंधन के लगभग सभी नेताओं ने अपने भाषणों में रोजगार को प्रमुख मुद्दा रखने के साथ साथ भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जनता को आगाह किया। सुनिए कांग्रेस से लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पूर्णिया में दिए भाषण का एक अंश।
भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हाँ या ना? जो चोरी करता है वो डरता है, हाँ या ना? पकड़े जाने से डरता है, हाँ या ना? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं, और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते।
इस बीच चुनाव आयोग के निष्पक्ष मतदान के दावे को खारिज करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने कई विधानसभा के ईवीएम स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों के रात अचानक बंद हो जाने के वीडियो फुटेज दिखाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। साथ ही समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर बिखरी सैकड़ों वीवीपैट पर्चियों का वीडियो भी सामने आया है। घटना का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने सहायक निर्वाचन अधिकारी को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मामले में FIR करवा मुख्य चुनाव आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम शुरू होते ही तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगा पूरे देश में इस प्रक्रिया को चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय 11 नवंबर से इस पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की पीठ में यह मामला सुना जाएगा। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा दाखिल इस याचिका में SIR प्रक्रिया को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया है। साथ ही SIR को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में दिए समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन भी बताया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कम समय होने के कारण लाखों असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे, जिससे वे मतदान से वंचित रह जाएंगे। ज्ञात रहे कि चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु में अक्टूबर 2024 और 6 जनवरी 2025 के बीच मतदाता सूची का विशेष संशोधन किया गया था, जिसमें प्रवास, मृत्यु और अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ रविवार को इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों में विपक्षी दलों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा दिल्ली के आम शहरी भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार के पास प्रदूषण से निपटने के लिए कोई प्लानिंग और ना ही कोई पॉलिसी है, और वह केवल प्रदूषण का डेटा छिपाने में लगी है। दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया। रविवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक इस सीजन के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में यह 400 पार के खतरनाक स्तर पर मापा गया। कई अखबारों और स्वतंत्र पत्रकारों ने प्रदूषण मापने वाले स्टेशनों के इर्द गिर्द पानी की बौछार करते टैंकरों का वीडियो पोस्ट कर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि वह वास्तविक प्रदूषण को कम दिखाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदूषण हटाने के बजाय साफ हवा का हक मांगने वाली जनता के खिलाफ ही दमन कर रही है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
Yeah.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।